एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
इस ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो सिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कम गलतियां कैसे करें, और इसका राज छिपा है गणितीय सोच में।
बिल्कुल, किताब का नाम है हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, और इसे लिखा है जॉर्डन एलनबर्ग ने।
हाँ, और ये किताब आज खास तौर पर जरूरी है ना?
बहुत ज्यादा,
क्योंकि हम सूचनाओं के मतलब एक सैलाब में जी रहे हैं। खबरें, सोशल मीडिया, विज्ञापन,
हर तरफ से दावे और आंकड़े फेंके जा रहे हैं।
सही कहा। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा करें, क्या सच है और क्या सिर्फ शोर है।
तो ये किताब गणित को एक डरावने विषय की तरह नहीं देखती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसे टूल की तरह पेश करती है जो हमारी सोचने की शक्ति को तेज करता है,
हमारी कॉमन सेंस को बेहतर बनाता है ताकि हम आसानी से गुमराह ना हो।
हाँ, ये पूछती है क्या हम गणित के मतलब मूल सिद्धांतों का इस्तेमाल करके बिना कोई मुश्किल कैलकुलेशन किए बेहतर फैसले ले सकते हैं,
और इसका जवाब है हाँ।
बिल्कुल, ये किताब तर्क की उन आम खामियों और सोचने के उन पूर्वाग्रहों पर रोशनी डालती है जिनके कारण हम अक्सर गलत नतीजे निकाल लेते हैं,
चाहे वो सेहत से जुड़े फैसले हों, पैसों के मामले हों,
या फिर किसी राजनीतिक दावे को समझना हो, हर जगह।
तो चलिए इस किताब के लेखक जॉर्डन एलनबर्ग से शुरू करते हैं। ये कोई मतलब आम गणित के टीचर नहीं है।
हाँ, ये विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड से पीएचडी हैं और काफी जटिल विषयों पर शोध करते हैं,
नंबर थ्योरी और ऐसी ही चीजें।
लेकिन खास बात यह है कि वो सिर्फ एक अकादमिक गणितज्ञ नहीं है, वो एक शानदार लेखक और कम्युनिकेटर भी हैं।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने कई बड़ी पत्रिकाओं जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वायर्ड के लिए लिखा है, और उनका एक मशहूर कॉलम डू द मैथ भी रहा है।
वाह, यानी उनमें ये कमाल की काबिलियत है कि वो गणित के मुश्किल आइडियाज को दिलचस्प कहानियों और रोजमर्रा की मिसालों से समझा सकते हैं।
बिल्कुल, उनका अंदाज एक ऐसे गाइड का है जो गणित की दुनिया की सैर कराता है, उसकी छुपी हुई खूबसूरती और ताकत दिखाता है,
न के फॉर्मूले रटाता है।
हाँ, उनमें गणितज्ञ वाली वो प्रिसिजन भी है और कहानी सुनाने वाले का अंदाज भी।
इसीलिए ये किताब उन लोगों के लिए भी है जो गणित से शायद थोड़ा घबराते हों।
अगर इस किताब को एक लाइन में समझना हो तो ये कहती है कि गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये सोचने का, तर्क करने का एक तरीका है। एलनबर्ग इसे एक तरह का एक्सरे विजन कहते हैं।
एक्सरे विजन मतलब?
मतलब गणितीय सोच हमें चीजों की सतह के नीचे छिपी असलियत देखने में मदद करती है, राजनीति हो, बिजनेस हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह।
बिल्कुल, किताब का मकसद यही दिखाना है कि गणित के सिद्धांत चाहे हमें पता हो या न हो, हमारी दुनिया को आकार देते हैं।
हाँ, राजनीति के दावों से लेकर लॉटरी जीतने की संभावनाओं तक सब में कहीं ना कहीं गणित छिपा है,
और अगर हम इन छिपी हुई संरचनाओं को पहचानना सीख लें
तो हम बेहतर सोच सकते हैं, कम गलतियां कर सकते हैं,
और विज्ञापन, मीडिया या अपनी ही भावनाओं के बहकावे में आने से बच सकते हैं।
ये किताब हमें गणितीय सोच के कई अहम पड़ावों से गुजरवाती है। शुरुआत होती है रैखिकता यानी लिनियरिटी जैसी आम मगर भ्रामक सोच से।
अच्छा?
फिर ये संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ले जाती है,
जैसे अपेक्षित मूल्य,
एक्सपेक्टेड वैल्यू।
हाँ, और माध्य की ओर प्रतिगमन यानी रिग्रेशन टू द मीन जैसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
और ये सब समझाया गया है लॉटरी, मोटापा, बेसबॉल, चुनावी राजनीति जैसे असल जिंदगी के उदाहरणों से।
बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, इसके लिए कोई एडवांस मैथ्स जानने की जरूरत नहीं। हाँ, ये किताब दिमाग को तेज करने वाली एक कसरत है जो हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को कैसे समझें
और तर्क का इस्तेमाल करके ज्यादा स्पष्टता से कैसे सोचें।
इसे आप आज के डेटा ड्रिवन जमाने में क्या कहते हैं, दिमागी आत्मरक्षा, इंटेलेक्चुअल सेल्फ डिफेंस की गाइड मान सकते हैं।
चलिए अब किताब के कुछ मुख्य हिस्सों और विचारों पर गहराई से बात करते हैं। किताब मोटे तौर पर 5 भागों में बटी है।
ठीक है।
पहला भाग है रेखिकीयता, लिनियरिटी के बारे में।
ओह, ये शायद हमारी सोच की सबसे आम गलतियों में से एक है ना?
हाँ, बिल्कुल। ये मान लेना कि चीजें सीधी रेखा में चलती हैं।
अगर कोई चीज थोड़ी अच्छी है तो ज्यादा और भी अच्छी होगी,
या कोई ट्रेंड अगर आज दिख रहा है तो वो हमेशा उसी रफ्तार से चलता रहेगा।
लेकिन असल दुनिया ऐसी सीधी नहीं है, है ना?
बिल्कुल नहीं। जैसे इकोनॉमिक्स में वो लैफर कर्व है।
हाँ हाँ, सुना है।
वो दिखाता है कि टैक्स रेट बढ़ाने से सरकारी कमाई हमेशा बढ़ती नहीं, एक पॉइंट के बाद घटने लगती है। रिश्ता सीधा नहीं, घुमावदार है।
या फिर वो मोटापे वाली बात।
हाँ, ये सोचना कि अगर मोटापा इसी रफ्तार से बढ़ा तो 2048 तक सब मोटे हो जाएंगे।
ये तो रैखिक सोच का क्लासिक उदाहरण है।
बिल्कुल, जो असलियत से दूर है, क्योंकि ट्रेंड बदलते हैं, सीमाएं होती हैं। ये सीधी लाइन वाली सोच हमें अक्सर भटकाती है।
अच्छा, तो सीधी सोच के खतरों को समझा, लेकिन क्या होता है जब हमारे पास पूरी जानकारी ही ना हो?
अच्छा सवाल है। यहीं पर एलनबर्ग हमें दूसरे हिस्से अनुमान, इन्फ्रेंस की दुनिया में ले जाते हैं।
अनुमान मतलब अंदाजा लगाना?
हाँ, पर उससे ज्यादा। ये अधूरे डेटा से नतीजे निकालने का विज्ञान है, मतलब स्टैटिस्टिक्स, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सबूतों को तौलने और कम गलत होने की कला है।
कम गलत होना दिलचस्प है।
और यहाँ एक कमाल का उदाहरण है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विमानों का।
हाँ, ये कहानी मैंने पढ़ी है। सेना उन विमानों को देख रही थी जो लड़ाई से क्षतिग्रस्त होकर वापस लौटे थे।
हाँ, सवाल था कि विमानों को कहाँ से मजबूत किया जाए, जहाँ गोलियों के सबसे ज्यादा निशान थे, पंखों पर, बॉडी पर।
हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है कि जहाँ ज्यादा छेद है वहीं कवच लगाओ।
लेकिन गणितज्ञ अब्राहम वाइल्ड ने कुछ और ही कहा।
क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कवच वहाँ लगाओ जहाँ गोलियों के निशान नहीं है।
नहीं है?
जैसे?
जैसे इंजन पर।
इंजन पर?
ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जिन विमानों के इंजन पर गोली लगी थी वो वापस ही नहीं लौटे।
ओहो,
जो विमान वापस आए वो थे जिनके इंजन सुरक्षित थे, यानी सबसे जरूरी डेटा तो गायब था।
वो विमान जो गिर गए?
हाँ, इसे कहते हैं उत्तरजीविता पूर्वाग्रह, सर्वाइवरशिप बायस।
वाह, मतलब हमें वो देखना होता है जो आसानी से नहीं दिखता, जो डेटा छूट गया है।
बिल्कुल, ये सोचना कि सिर्फ सफल लोगों या लौटी हुई चीजों को देखकर ही सब समझ आ जाएगा एक बड़ी गलती है।
ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अगला हिस्सा।
अगला हिस्सा है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन के बारे में, जो संभाव्यता सिद्धांत यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी से जुड़ा है।
अपेक्षा मतलब उम्मीद।
हाँ, पर एक खास तरह की उम्मीद। ये अपेक्षित मूल्य, एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे बात करता है।
अपेक्षित मूल्य, ये क्या होता है?
अपेक्षित मूल्य का मतलब है कि अगर आप कोई काम जिसमें किस्मत का हाथ हो बार बार करें तो औसतन नतीजा क्या निकलेगा।
अच्छा, जैसे लॉटरी का टिकट।
हाँ बिल्कुल, आप एक टिकट से अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप हजारों टिकट खरीदें तो औसतन आप पैसे गंवाएंगे ही।
क्योंकि टिकट का अपेक्षित मूल्य उसकी कीमत से कम होता है।
सही, लेकिन किताब में MIT के छात्रों की एक मजेदार सच्ची कहानी है।
अच्छा, क्या किया उन्होंने?
उन्होंने मैसाचुसेट्स लॉटरी में एक ऐसी कमी ढूंढ निकाली कि कुछ खास मौकों पर टिकट का अपेक्षित मूल्य उसकी कीमत से ज्यादा हो गया।
सच में?
फिर उन्होंने लाखों डॉलर के टिकट खरीदे और कानूनी तौर पर लॉटरी से मुनाफा कमाया।
कमाल है। ये दिखाता है कि अपेक्षित मूल्य सिर्फ किताबी बात नहीं, इससे असल जिंदगी में फैसले लिए जा सकते हैं।
हाँ, खासकर जब जोखिम और इनाम का सवाल हो।
और फिर आता है चौथा भाग, प्रतिगमन। ये भी काफी दिलचस्प लगता है।
हाँ, ये एक और सांख्यिकी विचार है, माध्य की ओर प्रतिगमन।
माध्य की ओर प्रतिगमन मतलब औसत की तरफ लौटना।
बिल्कुल, इसका मतलब है कि कोई भी असाधारण घटना, चाहे बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी, के बाद चीजें अक्सर सामान्य या औसत की तरफ लौटती हैं।
कोई उदाहरण है इसका?
सबसे आम उदाहरण खेल जगत में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जिंक्स है।
हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में। कहते हैं कि जिस खिलाड़ी की फोटो कवर पर छपती है उसका प्रदर्शन गिरने लगता है।
लोग सोचते हैं ये कोई बदकिस्मती है, जिंक्स है,
पर ऐसा नहीं है।
एलनबर्ग कहते हैं नहीं, ये बस माध्य की ओर प्रतिगमन है। खिलाड़ी कवर पर तब आते हैं जब उनका प्रदर्शन शिखर पर होता है, जो कि अक्सर मतलब अस्थाई होता है।
अच्छा,
उसके बाद उनका थोड़ा सामान्य प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। ये कोई जिंक्स नहीं, बस औसत की तरफ वापसी है।
तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, किस्मत का नहीं।
हाँ, इसी तरह जब कोई छात्र बहुत बुरा करता है और टीचर उसे डांटता है, और अगली बार वो थोड़ा बेहतर करता है तो टीचर को लगता है डांट काम कर गई,
जबकि हो सकता है ये सिर्फ प्रतिगमन हो, वो वैसे भी थोड़ा बेहतर करने वाला था।
बिल्कुल, ये तो कई चीजों पर लागू होता होगा। मतलब हम अक्सर कारण वहां ढूंढ लेते हैं जहां सिर्फ आंकड़ों का उतार चढ़ाव होता है।
सही बात है। अच्छा, और किताब का आखिरी हिस्सा है अस्तित्व,
एग्जिस्टेंस।
ये थोड़ा अलग है ना?
हाँ, ये थोड़ा ज्यादा गणितीय है, लेकिन इसके नतीजे भी असल दुनिया से जुड़े हैं।
कैसे?
ये हिस्सा इस बात पर है कि गणितज्ञ कैसे साबित करते हैं कि कोई चीज मौजूद है, भले ही उसे ढूंढना या बनाना मुश्किल हो।
अच्छा,
जैसे वोटिंग में कॉन्डोरसेट पैराडॉक्स। ये दिखाता है कि चुनावों में ऐसा हो सकता है कि लोगों की पसंद चक्रीय हो जाए।
चक्रीय मतलब?
मतलब ए को बी से ज्यादा पसंद करें, बी को सी से, पर सी को ए से।
अरे, तो फिर जीता कौन?
यही तो बात है। इसका मतलब शायद कोई एक सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो ही ना जो सबकी सच्ची पसंद हो।
ये तो लोकतंत्र के लिए सोचने वाली बात है।
हाँ, और इसी तरह ज्यामिति के अमूर्त सिद्धांत ये समझने में मदद कर सकते हैं कि गेरीमैंडरिंग कैसे काम करती है।
गेरीमैंडरिंग यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तोड़ मरोड़ कर किसी पार्टी को फायदा पहुँचाना।
बिल्कुल, ये क्यों लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इसमें भी गणित का कनेक्शन है।
तो यहाँ भी गणित का कनेक्शन असल दुनिया की समस्याओं से है।
हाँ बिल्कुल, हमें नहीं चलती रैखिक सोच के जाल से बचना जरूरी है। दुनिया कॉम्प्लेक्स है, सीधी नहीं।
तीसरा, जो डेटा गायब है उस पर ध्यान देना जरूरी है। वो हवाई जहाज वाला उदाहरण याद है ना, उत्तरजीविता पूर्वाग्रह।
हाँ, सिर्फ सफलता की कहानियां मत देखो, असफलताएं भी जरूरी सबक देती हैं। चौथा, संभाव्यता को समझना अनिश्चित दुनिया में फैसले लेने में मदद करता है।
जोखिम और इनाम को तौलना सीखना।
हाँ, और पांचवा, सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ होती हैं जरूरी नहीं कि एक दूसरे की वजह हो।
कॉरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, खासकर जब माध्य की ओर प्रतिगमन हो रहा हो, स्पोर्ट्स जिंक्स।
सही। छठा, सही सवाल पूछना अक्सर जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी होता है। गणित हमें यही सिखाता है, समस्या को ठीक से परिभाषित करना।
और आखिर में, आज के जमाने में गणितीय सोच सिर्फ गणितज्ञों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए जरूरी है।
बिल्कुल, डेटा, ग्राफ, आंकड़ों को समझने की क्षमता एक बुनियादी जरूरत बन गई है।
किताब में कुछ बातें बहुत सीधे और यादगार तरीके से कही गई हैं, जैसे रैखिकता पर।
हाँ, वो कोट, ये मानना कि दुनिया सीधी रेखा है या होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती है। जो भी मायने रखता है उसमें से ज्यादातर सीधा नहीं है,
ये बार बार याद रखने वाली बात है।
या फिर अब्राहम वॉल्ट वाला सबक,
कवच वहाँ नहीं जाता जहाँ गोलियों के निशान है, ये वहाँ जाता है जहाँ निशान नहीं है।
ये दिखाता है कि कैसे गणितीय तर्क हमारी सहज बुद्धि को चुनौती दे सकता है और सही राह दिखा सकता है।
और गणित की परिभाषाएं बदल दी उन्होंने।
क्या कहा था?
गणित करना मतलब सोचने में प्रभावी होना है, ये कैलकुलेशन से ज्यादा स्पष्ट सोच पर जोर देता है।
एक और चेतावनी है आंकड़ों के बारे में। हाँ, वो प्रतिशत वाली बात, प्रतिशत बताते वक्त ये ना बताना कि वो किसका प्रतिशत है, डिनोमिनेटर। ये आंकड़ों से झूठ बोलने का एक शानदार तरीका है।
यानी हमेशा पूछें, ये आंकड़ा किस चीज के मुकाबले में है, किसका प्रतिशत।
बिल्कुल, तो ये सारी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं?
बहुत तरीकों से, जैसे पर्सनल फाइनेंस में ही देखें।
हाँ, क्या हम किसी स्कीम के वादों को सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि शुरुआती नतीजे अच्छे दिखे?
वो रैखिकता या उत्तरजीविता पूर्वाग्रह हो सकता है।
या क्या हम निवेश के जोखिम को संभाव्यता से समझते हैं, अपेक्षित मूल्य का सोचते हैं?
और सेहत के मामलों में भी, जब कोई स्टडी कहती है कि किसी चीज से कैंसर का खतरा दोगुना हो जाता है,
तो क्या हम पूछते हैं कि असल में खतरा कितना था? मतलब 1% से 2% हुआ या 0.01% से 0.02% बहुत फर्क है?
सही।
या जब कोई घरेलू नुस्खा काम कर जाता है तो क्या हम सोचते हैं कि कहीं ये माध्य की ओर प्रतिगमन तो नहीं, मतलब हालत वैसे भी सुधरने वाली थी।
कामकाज में भी ये लागू होता है, क्या हम सिर्फ सफल प्रोजेक्ट से सीखते हैं या असफलताओं का भी विश्लेषण करते हैं?
या क्या हम किसी कर्मचारी के एक बार के खराब या बहुत अच्छे प्रदर्शन को उसका स्थायी स्तर मान लेते हैं, वो भी तो प्रतिगमन हो सकता है।
और एक नागरिक के तौर पर क्या हम राजनीतिक दावों में रैखिक सोच को पहचान पाते हैं?
हाँ, जैसे थोड़ा सा नियंत्रण मतलब पूरी तानाशाही, ये सीधी लाइन वाली सोच है।
क्या हम ओपिनियन पोल के नतीजों को मार्जिन ऑफ एरर के साथ समझते हैं, ये समझना कि उनमें थोड़ी गलती की गुंजाइश होती है?
मूल बात यह है कि ये किताब हमें एक बेहतर सोचने वाला इंसान बनने में मदद करती है।
ये सिखाती है कि थोड़ा रुकें, सवाल पूछें,
जो नहीं दिख रहा उसके बारे में सोचें,
और भावनाओं के बजाय तर्क का इस्तेमाल करें।
मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात रही वो यही है कि गणितीय सोच अपनाने के लिए गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं।
हाँ, ये बस दुनिया को देखने का एक ज्यादा साफ, ज्यादा तार्किक नजरिया है।
वो हवाई जहाज वाला उदाहरण
अविस्मरणीय है, वो इतनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे ये सोच हमें आम गलतियों से बचा सकती है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये रहा कि हमारी अपनी सहज बुद्धि, खासकर सीधी रेखा में सोचने या किस्मत को समझने के मामले में, कितनी आसानी से हमें धोखा दे सकती है।
सही कहा।
ये किताब हमें थोड़ा शक्की बनना सिखाती है, पर अच्छे तरीके से शक्की।
बेहतर सवाल पूछना,
अनिश्चितता से न घबराना और तर्क को अपना साथी बनाना।
ये गणित को स्कूल के बोरिंग सब्जेक्ट से निकालकर जिंदगी की एक सुपर पावर बना देती है।
हाँ, इसका मकसद हमें कम गलत बनाना है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।